उत्तरांचल और चंडीगढ़ पार्टी के सामने एक वाणी चल रही थी 7 जुलाई 1965 के तीसरे पेज के मध्यांत में। बात चल रही थी देवता तब कहेंगे जब संपूर्ण फरिश्ता बनते हैं। देवता कौन से लोक में होते हैं? सतयुग में होते हैं, स्वर्ग में होते हैं, और उससे पहले होते हैं फरिश्ता है। फरिश्ता बन करके फिर बाद में बनते हैं बिंदु परम धाम में, और वहां से लौटते हैं तो स्वर्ग में देवता बनते हैं। तुमको अभी देवता नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारा अभी फर्श की दुनिया वालों से रिश्ता भी पूरा टूटा नहीं है। तो पहले क्या बनना पड़े? फरिश्ता। उसके बाद जब फर्श की दुनिया वालों से रिश्ता टूट जाए तो पहुंचे निराकारी लोक में। एक शिव बाप, दूसरा न कोई। उसके बाद आएंगे कहां? स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में देवता कहेंगे। तो तुमको अभी देवता नहीं कहेंगे। किसको है? ये 65 की वाणी है, ब्रह्मा के तन से चली हुई है। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से किसको कह रहे हैं कि तुमको अभी देवता भी नहीं कहेंगे?
सामने पार्टी।
हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये बच्चे तो बाबा के सामने इमर्ज रहते ही हैं। क्या ब्रह्मा भी, विष्णु भी और शंकर भी ब्रह्मा के तन में तो बैठा ही हुआ है, लेकिन सामने इमर्ज करके भी कोई बच्चे को बोलता है तो बोला तुमको अभी देवता भी नहीं कहेंगे। मन, तुम अभी क्या हो? मनुष्य। मनुष्य हो है, तुम मनन चिंतन मंथन की स्टेज में हो। क्या मनुष्य किसे कहा जाता है? मनु की जो औलाद होता है उसे मनु कहा जाता है शास्त्रों में। मनु माना मनन चिंतन मंथन करने वाला, तो उसकी औलाद भी कैसी होगी? मनन चिंतन मंथन करने वाली होगी। इसलिए बताया कि तुम अभी मनन चिंतन मंथन कर रहे हो कि मैं आत्मा कौन, हू एम आई। देवताएं तो सतयुग में होते हैं, वो तो सत्य का युग है, और ये है झूठ खंड। तुम्हारा दैवी धर्म है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, ये कहते हैं ना? क्या कहते हैं?
ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः,
शिव परमात्माय नमः। क्यों ब्रह्मा विष्णु के बाद शिव परमात्माय नमः क्यों कहते हैं? शंकर देवताय नमः क्यों नहीं कहते है? शंकर को क्यों छोड़ दिया? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर
शंकर
देवताय नमः कहते नहीं? क्या कहते हैं? शिव परमात्मा ही नमः। वो उसको बेचारे को क्यों छोड़ दिया है? क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। क्यों कर दिया है एक? शिव विष्णु को मिला के एक क्यों नहीं किया? शिव ब्रह्मा को मिला के एक क्यों नहीं किया? कोई तो कारण होगा। दोनों को मिला के एक क्यों नहीं कर दिया है? बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे मन मना भव, क्या करो? मन मना भव, मन मेरे में लगा दो। माना तेरे मन के अंदर जो संकल्प हो वो मेरे मन के संकल्पों से पूरा मेल खा जाए,
उसके साथ जोड़ दो।
जोड़ दो, उसको कहते हैं आत्मा परमात्मा में क्या हो गई? लीन हो गई। माने हमारे अंदर जो संकल्प चल रहे हैं और परमात्मा के अंदर जो संकल्प चल रहे हैं उसमें अभी कहीं कहीं बहुत क्रास होता है। वो क्रास होना बिल्कुल बंद हो जाए। जो आत्मा में है सो परमात्मा में हो, परमात्मा की बात ही हमारे अंदर गूंजे। जो परमात्मा चाहता है हम वही करें, वही बोलें, वही सोचें। तो बोला कह देते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्मा नमः, लेकिन जानते नहीं है कि शिव परमात्मा को नमन क्यों करते हैं। शिव और शंकर इन देवताओं इनको मिला करके एक क्यों कर दिया है कि जरूर न जरूर कोई पुरुषार्थी ऐसा बच्चा है, शंकर भी तो बच्चा है ना, जिसने अपने को परमात्मा शिव के साथ लीन करके एक कर दिया, इसलिए वो पहले एक हो गया।
वो अलग बताते हैं, सबसे पहला पार्ट शिव शंकर अलग है।
हाँ, शंकर को वो पहले मिलकर के एक हो गया, तो जो पहले ओटे सो अर्जुन, जो पहले करे सो अर्जुन पहला नंबर, तो इसलिए कह देते हैं शिव परमात्मा नाम। दुनिया ने शंकर को ही परमात्मा समझ लिया, वास्तव में शिव की आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग, तो कह देते हैं ना कि ब्रह्मा परमपिता परमात्मा ही नमः कहेंगे क्या? और क्लियर कर दिया कि ब्रह्मा को परमपिता परमात्मा नहीं कह सकते, किसको कह सकते हैं? नहीं, तो ब्रह्मा भी नहीं विष्णु भी नहीं, शंकर के थ्रू ही परमपिता परमात्मा ही नमः कहा जा सकता है, जबकि उन्हों को ही देवता कहते हैं, फिर अपन को परमपिता क्यों कहते? सब परमपिता के रूप कैसे हो सकते? वो सन्यासी तो सिर्फ हम कह के बैठ जाते क्या? जब ब्रह्मा और विष्णु को ही परमात्मा ही नमः नहीं कहते, तो ये साधु सन्यासी अपने को शिव के बना करके कैसे बैठ गए? शिव हम कह के कैसे बैठ जाते हैं? यह भी ड्रामा में भूल है, ये उनकी ड्रामा में भूल है। क्या भूल है? कि उन्होंने अपनी अपनी आत्मा को ही परमात्मा समझ लिया। वास्तव में परमात्मा जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, वो आत्मा सो परमात्मा का स्वरूप थोड़े समय के लिए इस संसार में बनकर प्रत्यक्ष हो जाता है, बाकी ऐसा नहीं कि वो भी हमेशा के लिए परमात्मा हो जाए। शिव परमात्मा अलग, परमपिता परमात्मा अलग, और जो सुप्रीम पार्ट बजाने वाली सुप्रीमेसी हीरो पार्ट धारी आत्मा है वो अलग। तो ये भी ड्रामा में भूल है। क्या भूल है? सबसे बड़ी बड़ी भूल है दो, कौन सी बताई है? एक तो परमात्मा को सर्वव्यापी बता दिया, वास्तव में परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, इसका फाउंडेशन भी कहाँ पड़ता है? कैसे
समझ लेते
हैं? वो सारे ही समझे बैठे हैं कि हमारे डायरेक्शन पर चलो, हम सुप्रीम है, सुप्रीमेसी हमारी चलेगी और इस दुनिया में किसी की सुप्रीमेसी नहीं चलेगी, हम हैं सुपर पावर साकार में इस सृष्टि पर। तो जब ऐसा अहंकार बुद्धि में बैठ जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तुंडे तुंडे मतरे भिन्ना, सब अपनी अपनी बातें अलग अलग कह रहे हैं, परमात्मा तो सत्य ही आकर के बतावेगा, तो वो जो सत्य बताने वाला है वो मुकर्रर रथ में आकर के बताता है। क्या बताता है बच्चे? शिव को जो परमात्मा का रूप दिया है वो ब्रह्मा के द्वारा नहीं दिया है, विष्णु के द्वारा नहीं दिया है, वास्तव में वो सिर्फ शंकर के द्वारा ही परमपिता परमात्मा आदि देव के रूप में प्रत्यक्ष होता है। इसलिए मुरली में क्या बोला है? मुरली में बोला है देव देव महादेव कहते हैं, वह भी मैं हूँ, शंकर नहीं है स्वयं देव देव महादेव का पार्ट बजाने वाला, उसके द्वारा भी महादेव का पार्ट बजाने वाला मैं हूँ। जैसे ब्रह्मा के द्वारा प्यार का पार्ट बजाने वाला, सहन शक्ति का पार्ट बजाने वाला दादा लेखराज की आत्मा थी या परमात्मा शिव की सोल थी? वास्तव में बड़ी अम्मा ब्रह्मा का पार्ट किसने बजाया? शिव ने बजाया। ब्रह्मा ने अगर बजाया होता तो पहले भी 63 जन्म बजा लिया होता है, सारी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया होता, लेकिन नहीं। तो बोला ये बड़ी भारी ड्रामा में भूल है, इनका भी कोई दोष नहीं है, इन साधु सन्यासियों का भी कोई दोष नहीं है, अब उन्हों को रास्ता कैसे बतावे, असली बात उनको कैसे बतावे कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो एक व्यापी होकर इस सृष्टि पर आता है, ये सब भूले हुए हैं। अब उन्हों को भूल बतावे कौन? किसम किसम के अथाह रास्ते बताते हैं। अब बाप समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, वर्षा लेना है तो सिवाय ब्रह्मा के शिव बाबा से वर्षा और कोई ले नहीं सकता। क्या कहा है? किसके द्वारा वर्षा लेना है? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया है। वर्षा लेना है, वर्षा कौन सा है? पहले तो ये क्लियर हो जाए कि वर्षा क्या है, है? गति और सदगति का वर्षा है। गति माने हमारी आत्मा गतिशील हो जाए, आत्मा पत्थर बुद्धि बनी पड़ी है। पत्थर क्या है? एक जगह पड़ा रहता है, बुद्धि चलती नहीं। तो जैसे पत्थर बुद्धि जो आत्मा है, जैसे गायत्री मंत्र में कहते हैं धियो यो न प्रचोदयात, है मेरी धी माने बुद्धि को प्रेरित कर दो। हाँ, तो सबसे बड़ी बात तो बुद्धि है ना, है? तन बल है, धन बल है, जन बल है, और सबसे बड़ा है मनोबल। तो जो मनोबल अगर क्षिप्र हो जाए, तीखा हो जाए, तो जैसे हमारी आत्मा तीखी हो गई। तो वो आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए पहला वर्षा है गति,
बुद्धि को,
बुद्धि गतिशील हो जाए। क्या? बुद्धि पावरफुल हो जाए। और गति के बाद फिर है सदगति। सदगति कौन सी होती है? शरीर भी रहे और शरीर रहने के साथ साथ हम सुख में भी रहें। गति में क्या होता है? गति जब हो जाएगी, ऊंची से ऊंची गति हो जाएगी, परम धाम में हम पहुंच जाएंगे, तो वहां हमारी आत्मा निस्संकल्प हो जाएगी। क्या? अशांति के वाइब्रेशन से बिल्कुल परे हो जाएगी। शांति और दुख हमारे पास रहेगा ही नहीं। तो वर्षा सुख शांति का गति सदगति माना, सुख और शांति। तो वर्षा अगर लेना है तो सिवाय ब्रह्मा के शिव बाबा से कोई वर्षा ले नहीं सकता। अब बताओ ब्रह्मा कहां से आएगा? ब्रह्मा तो गए, भले चले गए, लेकिन अव्यक्त वाणी में बता दिया, जैसे तुम बच्चे सेवा स्थान चेंज करते हो, वैसे ब्रह्मा बाप ने भी सेवा स्थान चेंज किया है। इसका मतलब पहले माउंट आबू में सेवा स्थान था, अब माउंट आबू से छोड़ करके उन्होंने सेवा स्थान कोई दूसरी जगह परिवर्तन कर लिया। राजधानी कहाँ जमानी है? राजधानी दिल्ली में जमानी। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है, तब तक विनाश नहीं हो सकता, और जब तक विनाश नहीं होगा, तब तक दुनिया का कल्याण, पूरा कल्याण नहीं हो सकता। तो वर्षा लेना है तो सेवाय ब्रह्मा की, इसका मतलब ब्रह्मा की सोल दिल्ली में आकर के सारी दुनिया का मात्र प्रधान देश कौन सा है? भारत। कहते हैं ना भारत माता की जय। और भारत माता में भी ऐसा शहर कौन सा है जिस शहर पर सारी दुनिया के सब धर्मों ने राज्य किया? दिल्ली। दिल्ली माँ की गोद में हर बच्चा राज्य करता है। क्या? तो दिल्ली है वास्तव में जगत अम्बा। क्या? जगत अम्बा का रूप। जैसे भारत माता कह देते हो तो जड़ जमीन को समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में जड़ जमीन की बात नहीं है, कोई चैतन्य माता है अव्वल नंबर। ऐसे ही भारत देश के अंदर कोई ऐसा शहर है जिस शहर को दिल्ली का दर्जा मिला हुआ है, जिसके बारे में बाबा ने बोला है दिल्ली है बाप दादा का दिल। साहब की नजर दिल्ली के ऊपर है और बाप दादा की भी नजर दिल्ली पर है। तो दिल्ली की भी विशेषता हुई ना। तो ब्रह्मा का जो रूप है वो पूजा नहीं जाता, दाढ़ी मूछ वाला है, विकारी रूप दिखाया गया है, मनुष्य का रूप दिखाया गया है। लेकिन वही ब्रह्मा जब किसी स्त्री चोले में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के बाद वो सारी जगत के अम्बा के रूप में पूजा जाता है उसको। इसलिए ये दिल्ली का मौसम जो है वो सारे भारत के ऊपर असर डालता है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, मुरली में भी बोला है। क्या बोला है? दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार हो जाता है, दिल्ली के ऊपर सारा मदार। तो दिल्ली के ऊपर ज्यादा राजधानी स्थापना करने के लिए ज्यादा वजन देना पड़े। तो बोला सिवाय ब्रह्मा के शिव बाबा से कोई वर्षा ले नहीं सकता। माने वो ब्रह्मा की सोल अभी भी कोई माता के अंदर अपना पार्ट बजाए रही है। ब्रह्मा माने जग बड़ी माँ, लेकिन बड़ी माँ का वो रूप तो दाढ़ी मूछ वाला था, पुरुषतन था, इसलिए उसको रूप की पूजा नहीं होती, क्योंकि पुरुषतन सारे ही बता दिए दुर्योधन दुशासन। क्या? पुरुष तन सारे ही बता दिए मुरली में, सब दुर्योधन दुशासन है, लेकिन कन्या माताओं में ऐसे नहीं बोला। कन्या माताओं के लिए बोला कोई कोई सूपन खा पूतना होती, सब नहीं। तो वही ब्रह्मा की सोल कोई ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करती है और प्रवेश करके संसार के सामने जगद अम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती है। तो उस माँ के सिवाय स्वर्ग के गेट कोई खोल नहीं सकता, और स्वर्ग के गेट नहीं खोलेंगे तो वर्षा भी किसी को स्वर्ग का नहीं मिल सकता। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहते हैं, क्या
ब्रह्मा का दिन?
ब्रह्मा अज्ञान अंधेरे में भी आता है और ब्रह्मा ज्ञान के सोझरे में भी आता है। जब ब्रह्मा का दिन होता है तो सब सुखी हो जाते हैं, और जब ब्रह्मा की रात होती है तो सब दुखी हो जाते हैं। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो सारा मदार किसके ऊपर हुआ? एक के ऊपर हो गया। तो ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते हैं, अर्थात 84 जन्मों में पार्ट है। फिर 84 जन्म ब्रह्मा के लिए कहो अथवा लक्ष्मी नारायण के लिए कहो, क्या कृष्ण की सोल ब्रह्मा का भी पार्ट बजाती? फिर सतयुग में कृष्ण जब बड़ा होता है तो लक्ष्मी नारायण भी बनते हैं और वो भी 84 जन्म लेते हैं। तो सब उसे एक प्रियतम को बुलाते रहते हैं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, चाहे 33 करोड़ देवताओं में से कोई भी हो, सब उसको किसको? प्रियतम को। जो जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं उन सबसे ज्यादा प्रिय है सभी का। खुद ही मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूं, बुलाने की बात नहीं है, बुलाएं या न बुलाएं, लेकिन मैं तो अपने टाइम पर आता ही हूं। मेरी कितनी गिलानी कर दी है, कुत्ते बिल्ले कणकण में मुझे डाल दिए। मैं आता हूं ऊंचते ऊंच में, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये भी सोल तो ऊपर से उतरती है ना, तो उतरती होगी तो जरूर है ऊपर से, तो इनके अंदर तो कोई कर्म बंधन होता नहीं, परमधाम से आई हुई सोल है। तो परमधाम से जो सोल उतरेगी उसका अपना चोला तो होता ही नहीं, जरूर किसी में प्रवेश करती है। तो जैसे वो आत्माएं ऊपर से नीचे आती है, अपना अपना धर्म स्थापन करती है, कोई ना कोई अपना रथ बनाती है, ऐसे ही मैं भी इस सृष्टि पर जब आता हूं तो मैं कोई ना कोई का आधार लूंगा। वो इतने ऊंचे ऊंचे ग्रेट ग्रेट फादर कहे जाते हैं दूसरे दूसरे धर्मों के, महान धर्म पिताएं, तो इतने ऊंचे धर्म पिताएं हैं दुनिया में, उनका इतना मान है। क्राइस्ट को दुनिया की कितनी पब्लिक मानती है, मोहम्मद को दुनिया की कितनी पब्लिक मानती है, बुद्ध को दुनिया की कितनी पब्लिक मानती है, गुरु नानक को मानती है। तो इतने जो महान महान है तो कोई साधारण चोले में प्रवेश करेंगे क्या? हैं? वो भी तो साधारण चोले में प्रवेश नहीं करते, और मेरे को कहां ठोक दिया? मेरे को कणकण में छोड़ दिया। जो कणकण जैसा पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं उनके अंदर मेरे को ठोक दिया। तो बाबा कहते हैं मेरी तो बिल्कुल ग्लानी कर दी है, वास्तव में मैं तो ऊंचते ऊंच में प्रवेश करता हूं। क्या इस मनुष्य सृष्टि पर जो हीरो पार्टधारी है उस हीरो पार्टधारी में मैं प्रवेश करता हूं, बिल्कुल ही जैसे बेवकूफ बन जाते हैं सर्वव्यापी के ज्ञान से, क्या बन जाते हैं? बेवकूफ बन जाते हैं। कण कण के जर्रे जर्रे में मुझे डाल दिया है, वो कुछ समझते भी नहीं है, गुस्सा आती है। मैं हूं भी बिंदी, क्या
बिंदी?
मैं हूं भी बिंदी, 7 जुलाई 65 की वाणी का 4वां पेज। परंतु देखो रहते कैसे हैं, हूं बिंदी, और देखो रहते कैसे हैं और कहते कैसे हैं, क्या कहते हैं? कुत्ते बिल्ले में समाया हुआ है। अब मेरी आत्मा है तो छोटी सी ना, इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है, ये कुदरत है। आत्मा स्टार है, कैसे निकलती है और कैसे आती है ये किसी को कुछ पता नहीं पड़ता। कोई कहते हैं आंखों से होकर के आत्मा निकल जाती है, कोई कहते हैं मुख में से निकल जाती है, अब आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है कि जो शरीर के रोंगटे उनमें से भी निकल सकती है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी जगह की जरूरत नहीं है। जानते हैं ब्रकुटी के बीच में आत्मा रहती है क्या?
ब्रकुटी के बीच
पहले जो ऋषि मुनि थे वो इस बात को पक्का पक्का जानते थे। क्या जानते थे? कि शरीर में आत्मा कहाँ रहती है। वो जानते थे कि ब्रकुटी में आत्मा रहती है, इसलिए उन्होंने ये एक नियम बना दिया कि मस्तक पर सबको एक टीका लगाए, आत्मा यहाँ टिकी हुई है इसकी यादगार के रूप में। यहाँ बिंदी लगाएंगे तो एक दूसरे को देखेंगे तो देह भान नहीं आएगा, बिंदी को देख करके याद आ जाएगी ये आत्मा है, टीका को देख करके याद आ जाएगी ये आत्मा है। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो सिर्फ एक प्रसाधन का साधन बन गया। बिंदी बिंदी की जगह लगी रह गई, टीका लगाने वाले त्रिपुंड लगाते रह गए, और किसी को ये याद नहीं रहा कि मैं आत्मा बिंदी हूँ। कहाँ टिकी हुई हूँ? भ्रकुटी में टिकी हूँ। आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है जो भ्रकुटी में रहती है। जो कुछ एक्ट चलती है ड्रामा अनुसार चलती रहती है। इसमें सारा पार्ट रुधा हुआ है। क्या? जैसे टैप के अंदर सारा रिकॉर्ड भरा होता है, ऐसे ही आत्मा रूपी रिकॉर्ड में 84 जन्मों का सारा पार्ट
भरा हुआ है।
इतनी वंडरफुल बात, इतनी छोटी सी बिंदी जो आंखों से देखने में भी नहीं आती है, और उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये सब जो पार्ट है वो अविनाशी चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। ये भी वंडरफुल बात। क्या वो टैप तो कितने भी बढ़िया से बढ़िया बनाए जाएं, वो कभी न कभी खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये आत्मा रूपी टैप कभी अविनाशी टैप।
वो भरने वाला है उनको दिखाई देता है, ये भरने वाला कौन है?
ये भी भरा जाता है संगम युग में भरा तो जाता है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होता, अविनाशी है। ये रिकॉर्ड तो घिस जाते हैं। वो आत्मा रूपी ऐसा टैप है जो कभी घिसता नहीं है। फिर नया बनाते हैं, क्योंकि घिस जाता है तो नया बनाते हैं। आत्मा कब नहीं घिसती? आत्मा कभी घिसती नहीं। इनका पार्ट अविनाशी चलता ही रहता है, जैसे हीरा घिसता नहीं है, हैं? बहुत पक्का रहता है। हीरा घिसू होते हैं वो जानते हैं कि हीरे घिसने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पक्का रहता है। तो यह भी घिसती नहीं है, पार्ट बजाय फिर से रिपीट करते हैं। आत्मा का पार्ट अविनाशी भरा हुआ है। बाप कहते हैं मैं भी आत्मा हूं ना। क्या? जैसे तुम आत्मा है, आत्मा हो, वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूं ना। लेकिन अंतर क्या है? तुम जन्म मरण के चक्र में आते हो, मैं गर्भ जल से जन्म नहीं लेता, मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ। मेरे में भी आदि से लेकर अंत तक का पार्ट भरा हुआ है। क्या? मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन मेरे में भी हाँ आदि से लेकर के अंत तक का पार्ट भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में भी कैसे साक्षात्कार का पार्ट चलता है वो भी बच्चों को दिखलाते हैं। क्या? भक्ति मार्ग में मीरा को, तुलसीदास को, सूरदास को, रैदास को साक्षात्कार तो होते रहे ना बीच बीच में, तो कैसे पार्ट चलता है वो भी बच्चों को दिखलाते हैं। पार्ट नुधा हुआ है, पार्ट बिगर कुछ भी कर नहीं सकते। या जो पार्ट नुधा हुआ है उसके बिगर आत्मा कुछ कर नहीं सकती। ड्रामा अनुसार पार्ट बजाते रहते हैं। इस ड्रामा चक्र को भी समझना बहुत सहज है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से ऐसी एक भी आत्मा नहीं बचेगी जो इस चक्र को नटसेल में न जान ले। क्या? अपने अपने जन्मों का पार्ट जो है हर आत्मा को जानकर तब वापस जाना है। अभी हम तैयारी कर रहे हैं। क्या? ये ड्रामा का चक्र समझने की अभी हम तैयारी कर रहे हैं। बाबा लेने के लिए आए हैं। क्या? आए हैं, चले नहीं गए। बाबा लेने के लिए आए हैं तो क्या 69 में लेकर के चले गए? क्या आए हैं लेकर के नहीं चले गए? हाँ आए हैं, बैग बेस तैयार करना है अभी। क्या? जो भी बैग एंड बैगेज जो बिस्तरा फैला हुआ है ना, बुद्धि में विस्तार फैला हुआ है, हर आत्मा की बुद्धि में जो विस्तार, उसको समेटना है, तैयार करना है। बाबा को पुराना ककपन देते हैं, बाबा बदले में सब सोना दे देते हैं। क्या जो भी तुम्हारा बोरिया बिस्तर फैला हुआ है संसार में, बुद्धि जहां जहां तुम्हारी अटक रही है, वो सब ककपन क्या करो, देह और देह के सब संबंधों सहित, सब पदार्थों सहित अपनी आत्मा को मेरे प्रति अर्पण अर्पण करो। बदले में बाबा सोना देते। क्या तुम पुराना दोगे संबंधी? अगर अपना अर्पण करोगे तो पुराने संबंधी अर्पण करोगे, कोई पदार्थ अर्पण करोगे तो पुराना पदार्थ अर्पण करोगे, धन संपत्ति अर्पण करोगे तो कौड़ियां ही अर्पण करोगे, जिनका कोई ठिकाना नहीं, कोई वैल्यू नहीं। और जो कुछ भी तुम देते हो वो सब ककपन देते हो, और उसके बदले में मैं तुमको सोना बनाकर, सोना बना सच्चाई, मैं तुमको सचखंड देता हूँ। ज्ञान मान सरोवर में तुम गोता खाते हो। क्या ये परिवर्तन कैसे होता है कि ककपन दे करके तुम इतने पावरफुल बन जाते हो, सती की दुनिया में देवता बन जाते हो, ये होता कैसे है? ज्ञान मान सरोवर कहां पर है?
मान सरोवर तो कैलाश में है,
कैलाश पर्वत के पास, हिमालय पर्वत में, बहुत ऊंची स्टेज में मान सरोवर झील दिखाते हैं, बहुत बड़ा तालाब है बताते हैं। तो कहते हैं ज्ञान मान सरोवर तुम गोता खाते हो, कहते हैं वहां हंस रहते हैं। अब है बात ये चैतन्य ज्ञान मान सरोवर की, जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं, हैं? ईश्वर शिव जिसमें प्रवेश करते हैं, उस ज्ञान मान सरोवर में तुम ज्ञान का गोता खाते हो। ये पढ़ाई की बात है, कोई स्थूल गोता पानी में लगाने की बात नहीं है। कहते हैं उस मान सरोवर झील का जल जो है बिल्कुल पारदर्शी है, ऊपर से देखने में अंदर तक नीचे तह तक सारा दिखाई पड़ता है, कितना पारदर्शी पानी है। तो तुम ऐसे ज्ञान मान सरोवर में गोता खाते हो, ये पढ़ाई की बात है। सबसे बड़ा शीशा कौन है? मधुबन है ज्ञान दर्पण, और मधुबन में सबसे बड़ा दर्पण है बाप, बाप है सबसे बड़ा दर्पण, दर्पण दर्पण माने पारदर्शी, जिसमें सब कुछ आर पार दिखाई दे जाए। तो पढ़ाई की बात है, जिससे स्वर्ग की परी बन जाते। इस ज्ञान मान सरोवर में गोता लगाने से तुम स्वर्ग की परी बन जाते हैं। परियां क्या करती हैं? वो तो ज्ञान की परियां हैं, ज्ञान युग के, उनको पंख लगे हुए हैं, हैं? वो इधर उड़ती हैं, उधर उड़ती हैं, चारों तरफ उड़ के क्या करती है, सृष्टि की सेवा करती है। बाकी माया ने पंख तुम्हारे तोड़ डाले। क्या दिखाते हैं रामायण में? क्या दिखाया है? जटायु पक्षी के पंख रावण ने काट दिए। तो माया रावण ने तुम्हारे पंख तोड़ डाले हैं। कौन से पंख तोड़ डाले हैं? ज्ञान और योग के पंख तोड़ डाले हैं। जब ज्यादा माया आक्रमण करती है तो बाबा की याद आना भूल जाते हैं, या तो याद आती नहीं है, या तो बड़ी मुश्किल से याद आती है, बुद्धि में से ज्ञान सारा निकल जाता है। तो माया जटायु ने तुम्हारे पंख तोड़ डाले हैं, उड़ नहीं सकते। क्या हम याद की अवस्था में बहुत ऊंची स्टेज में उड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि इसी दुनिया में पड़ी रहती है, हम ऊंचे नहीं उड़ पाते। ये समझने की बात है। क्या समझाया जाता है आत्मा कैसे रॉकेट है? जैसे वो रॉकेट बहुत तीखा उड़ता है, ऐसे आत्मा भी बहुत तीखा रॉकेट है। रॉकेट रॉकेट जब ऊपर में जाते हैं तो समझते हैं खुदा के निंदक बन जाते हैं। रॉकेट जब ऊपर में जाते हैं तो मुसलमान लोग ऐसा समझते हैं कि ये इतने ज्यादा साइंस के साधन निकाले हैं, ये बहुत ज्यादा साइंस के साधन निकालेंगे तो ये खुदा के निंदक हैं। तो समझते हैं खुदा के निंदक बन जाते हैं। अब खुदा कोई वहां बैठा है क्या कि ऊपर रॉकेट में जाकर जाने से कोई मिल जाएगा? वास्तव में ये आत्मा रॉकेट की बात है। आत्मा रॉकेट जब बहुत ऊंची स्टेज में जाती है तो परमात्मा की नजदीक नजदीकी हो जाती है। कहते हैं तुम बच्चे कहां बैठो? कहते हैं गुरु जी की उपासना करो। उपमाना नजदीक, आसन माना आसन जमा के बैठो। किसके नजदीक आसन जमा के बैठो? उपासना, गुरु जी के पास। तो गुरु जी के पास जाने के लिए स्टेज भी तो वैसी चाहिए। क्या स्टेज चाहिए? मुरली में बोला मेरे पास बाप के पास कौन रह सकेंगे? नहीं, हाँ हाँ श्रीमत पर चलेंगे, लेकिन श्रीमत पर चलना भी कोई मासी का घर थोड़ा है। बोला है जो पूरे मरे हुए होंगे वो बाप के समीप रह सकेंगे। क्या? जो पूरे मरे हुए होंगे वो बाप के नजदीक रह सकेंगे, नहीं तो फिर नजदीक जाना पसंद ही नहीं करेंगे, नफरत आने लगेगी। क्या? इसलिए बोला बाप कहते हैं खुदा के निंदक बनने की बात नहीं है। ऊंची स्टेज में जाने का मतलब ये नहीं कि तुम खुदा के निंदक बन जाओ, लेकिन हुआ है ऐसा कि जिन जिन आत्माओं ने उस निराकार ज्योति बिंदु को याद किया रॉकेट बन करके, आत्मा रूपी रॉकेट बन करके, तो निराकार को याद करने से ऊंचे उड़ते 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 ऊंचे तो उठ जाते हैं, लेकिन फिर रास्ता नहीं मिलता और फिर नीचे गिरते हैं। तो निराकार को याद करने से ऊंचे उड़ते 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 ऊंचे तो उठ जाते हैं, लेकिन फिर रास्ता नहीं मिलता और फिर नीचे गिरते हैं। माने विधर्मी आत्माएं जितनी भी है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये साकार को तो मानती नहीं है, और जब साकार को मानती नहीं तो देवत्व को प्राप्त नहीं कर सकती, तो निंदक बन जाते हैं। अब खुदा कोई वहां बैठा है क्या? आत्मा रॉकेट है, ये सारे प्लेन आत्माओं के जानने के हैं। बुद्धि में आना चाहिए, बाबा हमारा पंडा है। क्या?
पंडा,
पंडा माना
साथ ले जाने वाला,
पंडयति, पंडयति माने जो हमको रास्ता दिखा करके ले जाता है उसे कहा जाता है पंडा। तो बाबा हमारा पंडा है, ढेर के ढेर आत्माओं को ले जाते हैं। किसको ले जाते हैं? पंडा तो है, वो पंडे तो जिस्मों को ले जाते हैं, जिस्म की यात्रा कराते हैं, और हमारा पंडा बुद्धि की यात्रा करना सिखाता है। बुद्धि ऐसी श्रेष्ठ बन जाती है, बुद्धि ऐसी सूक्ष्म बन जाती है कि हम परम धाम तक की सैर आसानी से कर सकते हैं। परम धाम से भी परे हम स्वर्गलोक के भी नजारे यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं। तो डेग डेग आत्माओं को ले जाते हैं। बाप कहते हैं मेरा काम ये है। कौन सा काम है? आत्माओं को ऊंची स्टेज में ले जाना और सही रास्ता दिखाना। ऐसे नहीं कि ले जाए और फिर बीच में हम भटक जाए। मैं सहज राजयोग और ज्ञान सिखाता हूँ। जो राजयोग सिखाता हूँ वो कोई हठ योग नहीं है, कठिन योग नहीं है, मैं बहुत सहज करके समझाता हूँ। राजयोग की बात भी सहज करके समझाता हूँ और जो राजयोग सिखाता हूँ वो भी बहुत सहज है। मैं नॉलेज फुल हूँ। किस बात का नॉलेज फुल हूँ? सृष्टि के आदि मध्य अंत का तो नॉलेज फुल हूँ ही, लेकिन सहज रीति से मुश्किल को सहज कैसे किया जाए उसके लिए भी मैं नॉलेज फुल हूँ। इनमें बैठ तुमको अपना परिचय देता हूँ। क्या कहा? इनमें बैठ, इसमें बैठ नहीं, इसमें क्यों नहीं कहा?
तो एक वचन,
हाँ एक वचन, माने इसमें भी बैठता हूँ, कृष्ण की सोल में भी आता हूँ, और इनमें इसलिए कहा कि कभी कृष्ण की सोल कभी राम की सोल। जैसे बैल के लिए बताया ना कि बैल के सिंग पर पृथ्वी रखी हुई है, धरणी किसके? बैल के सिंग पर रखी हुई, शास्त्रों में दिखाते हैं। जब ये सिंग थक जाता है तो यूं करते हैं तो दूसरे सिंग पर पृथ्वी को ले लेते हैं। अब ऐसी तो कोई बात बैल की बात है नहीं, वास्तव में ये दो बैलों की जोड़ी है, है? ये दो आत्माएं हैं विशेष, जिन आत्माओं के द्वारा शिव बाबा अपना कार्य करते हैं, कराते हैं, करण करा बनहार है। इनमें बैठ, मैं तुमको अपना परिचय देता हूँ। क्या? मैं बिना इनमें बैठे परिचय नहीं दे सकता। मेरा परिचय मेरे सिवा और कोई दूसरा इस संसार में दे नहीं सकता। शास्त्रों में भी क्या कह दिया है? जे ही जानो ते ही देव जनाई। हाँ, जिसको जिस पर तुम्हारी रहमत हो जाती है उसको तुम्हारा परिचय, परमात्मा का परिचय, परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, मेरे में भी पार्ट है। क्या? तुम्हारे में 84 जन्मों का पार्ट है और मेरे में संगम युग में क्या क्या पार्ट बजाना है वो सारा पार्ट मेरे में भरा हुआ है। मैं बजाता हूं, तुम्हारा पार्ट जास्ती है। क्यों? हाँ, तुम चारों युगों में पार्ट बजाते हो, ऑलराउंड पार्ट बजाते हो, और मैं सिर्फ संगम युग में आकर पार्ट बजाता हूँ। मैं तो फिर आधा कल्प वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। क्या? आधा कल्प
2500 वर्ष।
वानप्रस्थ में बैठ जाता हूं? ऐसे क्यों कहा है? क्यों
बच्चे सभी
नहीं, सौ साल का मना है।
मैं तो फिर आधा कल्प वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। सत्युग्रता वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं, फिर द्वापर युग में आ जाते हैं क्या? फिर क्यों कहा? मैं तो फिर आधा कल्प वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। हैं? वाणी से परे हो जाता हूँ, उसके बाद साक्षात्कार पार्ट, साक्षात्कार कराने का पार्ट शुरू हो जाता है, तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है। कहते हैं भगवान की प्रेरणा आई सृष्टि रचने की। क्या जब बच्चे सारे दुखी हो जाते हैं तो भगवान को प्रेरणा आई कि सृष्टि रचे, नई सृष्टि रचे? अब समझते नहीं है। बाप कहते हैं मेरा पार्ट आता है तो मैं इसे साधारण तन में आए तुमको राजीव सिखलाता हूं। क्या किसके द्वारा राजीव सिखलाता हूं? साधारण तन में। साधारण तन में कौन सा साधारण तन? दादा लेखराज का तो लंबा चौड़ा गोरा चिट्ठा राजाओं जैसी पर्सनालिटी थी, उसको साधारण तन कैसे कहें? कहें है? नहीं कहें। क्यों?
पर्सनालिटी
के हिसाब से साधारण तन तो नहीं कहा जा सकता, वो तो राजाओं जैसा पर्सनालिटी वाला शरीर था। तो कहा मैं साधारण है, हाँ मैं गरीब में आकर के तुमको साधारण तन में आकर के सारा राजयोग की बात सिखाता हूँ। राजयोग जो है जिसमें राज भरा हुआ है, वो राजयोग मैं साधारण तन में आकर के सिखाता हूँ। ब्रह्मा के तन के द्वारा राजयोग सिखाने की बात नहीं है। मैं गर्भ में तो नहीं आता हूँ, ये राजयोग सिखाने के लिए मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। पतित मनुष्य में आए राजयोग सिखाऊंगा कि कच्छ मच्छ में आऊंगा? है मना, जानवरों में आकर के मुझे पढ़ाई पढ़ाने की दरकार नहीं है, क्योंकि जानवरों को उद्धार थोड़ी करना है। मनुष्य सुधरता है तो सारी दुनिया सुधर जाती है, मनुष्य बिगड़ता है तो सारी दुनिया बिगड़ जाती है। क्यों मनुष्य के ऊपर ये मदार क्यों है?
क्योंकि मनुष्य पतित हो जाते तो उसको पावर बनाने
नहीं, मनुष्य जो है उसमें मन प्रधान है, दूसरे जीव जंतुओं में मन बुद्धि की प्रधानता नहीं है। तो वाइब्रेशन को जितना कंट्रोल मनुष्य कर सकता है उतनी दूसरी आत्माएं, जीव जंतुओं की आत्माएं, पशु पक्षी जो है, कीड़े मकोड़े, वो वाइब्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका उदाहरण जंगल में जो जानवर रहते हैं उनको कोई हॉस्पिटल होते हैं क्या? वो स्वस्थ रहते हैं। और वही जानवर मनुष्यों के साथ जहां रहते हैं पालतू बन जाते हैं तो उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। क्या कारण हुआ? क्या कारण हुआ?
क्योंकि वो मानव के साथ
नहीं। हाँ, मनुष्य जैसे पतित हो गया है तो जानवरों को भी वाइब्रेशन आसानी से पतित हो जाते हैं। तो मनुष्य के ऊपर सारी दुनिया का मदार है। तो मैं मनुष्य के तन में आऊंगा पढ़ाई पढ़ाने के लिए कि जानवरों के कच्छ मच्छ अवतार लेकर के आऊंगा? ये बात समझने की है। उन्होंने तो कच्छ मच्छ अवतार दिखाई दिए,
किन्होंने बोलेगा भी क्या
है?
जानवरों के मुख से क्या बोलेगा?
हाँ वही तो बात उन्होंने दिखा दिया है तो ज्ञान कैसे बताएगा?
ज्ञान कैसे
सुना? हाँ, तो मैं कच्छ मच्छ में नहीं आता हूँ। मैं पतित को पावन कैसे बनाता हूँ ये तुम जानते हो। क्या कोई सन्यासी के तन में पावन तन में नहीं आता हूँ? पतितों को पावन बनाने के लिए कोई सन्यासी के तन में आ जाए तो क्या मुसीबत आ जाती?
वो तो अपने को पावन समझते
हैं। नहीं, वो तो अपने को कहते हैं बहुत पवित्र हो, तो जो बहुत पवित्र है तो उसके तो नजदीक ही कोई नहीं आएगा। जब जब उसके संसर्ग में ही संपर्क में नहीं आएगा, नजदीक ही कोई नहीं आएगा, संघ के रंग में नहीं आएगा तो दूसरों के ऊपर असर कैसे पड़ेगा? इस सृष्टि में इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद, महात्मा गांधी बड़े बड़े आए और आकर के इसी दुनिया के रंग में रंग करके नीचे गिर गए। सारी सृष्टि भी नीचे गिरती जाती है और ऊपर से आने वाली पावन आत्माएं भी नीचे गिरती जाती है। सारी मनुष्य सृष्टि नीचे गिरती चली जा रही है। अब उनको उठाएगा कौन? सब तो संघ के रंग में आ जाते हैं, तो सबको उठाने वाला वही हो सकता है जो संघ के रंग में आने के बावजूद भी जिसके ऊपर संघ का रंग न लगे तो वो कहा जाएगा पतित पावन। और पतित पावन आएगा भी तो पतितों के संघ में पहले आएगा, ऐसे नहीं कि पावन में प्रवेश कर जाए तो फिर पतितों का उद्धार कैसे करेगा। इसलिए बोला मैं पतित को पावन कैसे बनाता हूं ये भी तुम जानते हो। तुम किससे बोला? क्या जिन बच्चों से बाप बात करते हैं वो जानते हैं? जैसे मुरली ने बोला मैं तुम बच्चों से बात करता हूं, ये बीच में सुन लेता है। इसका मतलब ब्रह्मा बाबा बात को नहीं समझ रहे हैं क्या? ब्रह्मा बाबा इस बात की गहराई को नहीं समझते हैं कि पतितों को पावन कैसे बनाया जा सकता है। इसलिए जो समझ सकता है इस बात की गहराई को उसमें आकर प्रवेश करता हूँ और तुमको पढ़ाई पढ़ाता हूँ। अगर ब्रह्मा ने पहले समझा होता, ब्रह्मा ने ही इस बात की गहराई को समझ लिया होता तो यज्ञ के आदि में जो भितंडा खड़ा हो गया था, झगड़ा हुआ था, वो झगड़ा होता ही नहीं। तो बोला किस बात का झगड़ा हुआ था? यज्ञ में जितने भी झगड़े होते हैं किस बात में झगड़े होते हैं? झगड़ों का मूल कारण क्या होता है?
खुद अपने को ही समझने लगते
हैं। नहीं नहीं नहीं, यज्ञ हाँ अपवित्रता। जितने भी झगड़े होते हैं वो सारे झगड़ों की मूल जड़ है इम्प्योरिटी। क्राइस्ट के लिए भी कहा, क्राइस्ट को भी सूली पर किस बात के कारण चढ़ाया? इम्प्योरिटी की बात, प्योरिटी की बात पर ही क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया। तो वास्तव में मैं जब आता हूँ जिस तन में, उस तन के द्वारा संसर्ग संपर्क में, सारी सृष्टि के संसर्ग संपर्क में आकर के सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाता हूँ। इस बात की गहराई को समझ नहीं पाते, ब्रह्मा भी नहीं समझ पाया। तो बोला ब्रह्मा को बाबा बे भी कहते हैं। मुरली बोला ब्रह्मा को बाबा क्या कहते हैं? बे भी, मैंने बे भी बुद्धि है, बात की गहराई को ज्यादा नहीं समझ सकता, बे से नालिस तक उनकी बुद्धि में बात बैठ जाती। तो बोला तुम जानते हो इस बात को और कोई नहीं जानते। तुम किससे कहा जाता है?
जो सामने सम्मुख बैठे,
जो बाबा के सन्मुख राजयोग सीखने वाले बच्चे बैठे होंगे। 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ करके तो कोई जगदम्बा बच्ची में अपना काम करना शुरू किया, हो तो जगदम्बा हो गई तो जगत पिता भी क्या ऊपर छोड़ चला जाएगा? जगत पिता भी कोई बच्चे को आधार बना करके अपना काम करता है। तो जगत पिता जो है उन बच्चों को सामने रखकर की ये बात बोलता है मुरली में इमर्ज करके कि तुम इस बात को जानते हो कि पतित को पावन कैसे बनाता हूं, कैसे बैठ शिक्षा देता हूं। परम पिता परमात्मा आयकर सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। कठिन राजयोग नहीं है, क्या है? बहुत सहज राजयोग है। और सहज राजयोग भी कितना, परमात्मा खुद आता है सिखलाने के लिए, तो परमात्मा के लिए तो गायन है, मुश्किल को सहज करने वाला। आय कर सहज राजयोग और ज्ञान सिखला कर विश्व का मालिक बना देता हूं। ये कार्य दुनिया में और कोई भी टीचर, कोई भी गुरु नहीं कर सका। क्या कि कोई गुरु ने हिटलर को, मुसोलिनी को विश्व का मालिक बनाया होता? कोई नहीं बना सका। तो ये कार्य करने के कारण उनको जादूगर भी कहते हैं। क्या ऐसा जादू सिखाते हैं कि सारे विश्व का मालिक बना देते हैं? क्योंकि नरक को स्वर्ग बनाते हैं ना। जैसे जादूगर क्या कहते हैं, जादूगर भी क्या करते हैं,
एक चीज को
दूसरी चीज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नरक को स्वर्ग में कन्वर्ट करना ये भी एक जादूगरी की बात हो गई। और ये ऐसी जादूगरी दुनिया में कोई भी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, धर्म पिता आकर नहीं कर सके। क्या नहीं कर सके? नरक की दुनिया को स्वर्ग नहीं बना। वो इस दुनिया को नरक का और ज्यादा नरक बना दिया। क्या जितने भी आए दुनिया और ज्यादा नरक बनती गई, लेकिन नरक को स्वर्ग किसी ने नहीं बनाया। तो मैं आकर के नरक को स्वर्ग बना देता हूँ, ऐसी जादूगरी करता हूँ, तुमको सारा राज अच्छी रीति समझाते हैं। क्या नरक को स्वर्ग बनाने की जादूगरी कौन सी है? वो राज अच्छी तरह से तुम्हारी बुद्धि में बैठाता हूं। सृष्टि का विनाश कैसे होगा ये भी तुम्हारी बुद्धि में बैठता है पहले कि सृष्टि का विनाश कैसे होगा और कैसे विनाश कल्याणकारी, ये आपस में कैसे लड़ेंगे? कौन? कौरव? नहीं, पांडव नहीं लड़ते। पांडव को तो लड़ाई लड़ना ही नहीं है। कौरव और यादव आपस में कैसे लड़ते हैं ये तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। रक्त की नदियां कैसे बहेंगी? क्या रक्त की नदियां कैसे बहेंगी? रक्त भी दो तरह का होता है, एक सूक्ष्म एक स्थूल। स्थूल खून जो होता है वो तो शरीर के अंदर दौड़ता है, और जो सूक्ष्म संकल्पों का खून है वो मन बुद्धि आत्मा के अंदर दौड़ता है। जैसे ये खून में भी दो तरह का खून होता है, एक शुद्ध एक अशुद्ध। तो नसें नाड़ियां भी शरीर में दो प्रकार की हैं, एक काला खून बहाने वाली और एक नाड़ियां शुद्ध खून बहाने वाली। तो ऐसे ही ये परमात्मा की 16,000 नसें नाड़ियां हैं, श्रेष्ठ आत्माएं, आधी लेफ्टिस्ट और आधी राइटिस्ट। हाँ, आधी निगेटिव खून बहाने वाली और आधी पॉजिटिव खून बहाने वाली। तो बोला रक्त की नदियां बहेंगी, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के खून की नदियां बहेंगी। पहले तो यह सूक्ष्म विनाश होगा ब्राह्मणों की संगम की दुनिया के अंदर। क्या 76 में स्थापना विनाश की घोषणा की थी मुरलियों में, बोला था 65 में मम्मा के शरीर छोड़ने के साथ ही साथ 66 में 4 चित्र बने थे। उन पुराने 4 चित्रों में जो माउंट आबू से बने थे साक्षात्कार के द्वारा, उन चित्रों में ये घोषणा कराई दी गई। वो चित्र अभी भी कहीं कहीं रखे हुए हैं कि 10 वर्ष में आने वाले 10 वर्षों में दुनिया का विनाश होगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य आवेगा, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। तो स्थूल बुद्धि वालों ने स्थूल समझ लिया कि स्थूल दुनिया का विनाश हो जाएगा। अब हर काम सूक्ष्म में पहले संपन्न होता है कि पहले स्थूल में संपन्न हो जाता है? अरे मकान भी बनाया जाता है तो पहले बुद्धि में खाका आता है, बुद्धि में खाका आने के बाद फिर कागज पर खाका खींचा जाता है, फिर कागज में बनाने के बाद फिर स्थूल में बनाया जाता है। तो नई दुनिया आने के लिए पहले तो बुद्धि में खाका आना पड़े। तो नई दुनिया का खाका जो है वो 76 में सबसे पहले कोई आत्मा की बुद्धि में आ जाता है, और उसको कहा जाता है 76 में परमात्मा बाप आते हैं। 76 को प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। क्या हमारे ब्राह्मण परिवार में 76 को प्रत्यक्षता वर्ष मनाया? तो ऐसा नहीं कि 76 से पहले बाप की प्रत्यक्षता का काम नहीं किया था, सेवा नहीं की, उससे पहले भी इस प्रत्यक्षता की सेवा की, उसके बाद में अभी तक भी प्रत्यक्षता की सेवा चल रही है, लेकिन 76 को ही प्रत्यक्षता वर्ष क्यों मनाया गया? इसलिए मनाया गया कि 60 में 36 में जब परमात्मा ने प्रवेश जिस व्यक्तित्व में किया था वो उस समय 60 साल का था। क्या मुकर्रर रथ, और वो 60 साल का रथ 76 में आके पूरा 100 साल का हो जाता है। हाँ, तो वो मुकर्रर रथ जब 100 साल का पूरा हो गया तब उसमें परमात्मा प्रवेश करके, सुप्रीम सोल प्रवेश करके सहज राज्य सिखाने का कार्य शुरू करते। तो उस समय ये बात क्लियर होती है कि ब्राह्मणों की संगी भी दुनिया में 76 से स्थापना और विनाश का कार्य असली रूप में शुरू हुआ। 76 से दिल्ली के अंदर नया संगठन ब्राह्मणों का बनना शुरू, एडवांस पार्टी का शुरू हो चुका था, और 76 से लेकर के अब तक भी वो कार्य स्थापना और विनाश का ज्यों का त्यों, जितनी जितनी स्थापना होती जाती है उतना उतना विनाश का कार्य भी बिल्कुल तैयार हुआ पड़ा है। क्या? हाँ बिल्कुल तैयारी हुई। देर किस बात की है? राजधानी स्थापन हुई और विनाश शुरू हो जाएगा। तो राजधानी में पहले कुछ तो लोग होंगे हैं कि पहले ही 9 लाख हो जाएंगे हैं। जब सूक्ष्म राजधानी स्थापन हो रही है तो सूक्ष्म राजधानी का जो किला है वो भी छोटा सा संगठन होगा। तो बोला रक्त की नदियां कैसे बहेंगी? जब राजधानी स्थापन होगी तो दिल्ली में एक तरफ परिस्थान नजर आएगा और दूसरी तरफ कब्रिस्तान नजर आएगा। दिल्ली कब्रिस्तान, दिल्ली परिस्थान। दिल्ली में खून की नदियां सबसे जास्ती बहती है। और दिल्ली में जैसे खून की नदियां सबसे जास्ती बहती हैं, वैसे दूध की नदियां सबसे जास्ती दिल्ली में बहती हैं। तो बोला ये बाप बैठे इन बातों को समझाते हैं। क्या कहा? इन बातों को कि सन 76 में कैसे नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है, ये बात बाप के सिवाय और कोई समझाए? कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी इन बातों को नहीं समझा सकता। और वो समझाएंगे क्या? वो तो चित्रों को ही उड़ाने लगे। पुराने जो चित्र हैं ब्रह्मा बाबा के समय के बनवाए हुए, उन चित्रों को गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उस बात को समझा ही नहीं सकते।
अभी ये दिल्ली का प्रोग्राम बन रहा है, दिल्ली का प्रोग्राम बना, पोस्टर लगे, कहीं ब्रह्मा है ही नहीं उसमें।
और त्रिमूर्ति उनकी अपनी बननी चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति? यज्ञ के आदमी उन्होंने बाप को उड़ा दिया और यहाँ आते आते तीनों मूर्तियों को उड़ा दिया। हाँ, तो बाप बैठ समझाते हैं रक्त की नदी यहाँ बहेगी। बाहर की दुनिया में भी ऐसे ही हो रहा है क्या? पहले जो नोट बनते थे ना, 10 के 100 के 1000 के 500 के, उनमें त्रिमूर्ति बड़ा सा डाला जाता था, ब्रह्मा विष्णु शंकर की यादगार 3 शेरों का चित्र डाला जाता था। अब वो चित्र उड़ा दिया, बाद में क्या किया उन्होंने? गांधी जी का चित्र डाल दिया क्या? हाँ, जैसे हमारे यज्ञ में त्रिमूर्ति को हटा करके ब्रह्मा बाबा का चित्र डालना शुरू कर दिया। और अभी क्या किया? अब ये मनुष्यों के चित्र डालना शुरू कर दिए। तो हाँ, तो मनुष्यों के चित्र डालना शुरू कर दिए मनुष्य गुरु। तो ऐसे ही यहाँ पर बात बताई।
और अभी ये नोट है ना, वो कैंसिल हो रही है, मैं तो बैंक में हूँ ना।
हाँ,
तो हमको अभी वो सर्कुलर आ गया है।
हाँ,
कि जो अशोक पिलर वाली वो 3 शेर वाली।
हाँ,
और गांधी जी की नोट अलग अलग करो।
हाँ,
क्योंकि जो 3 शेर वाली नोट बंद करने वाली है, इसलिए वो वापस रिजर्व बैंक को भेज देंगे।
अच्छा, उनको बंद करके रिजर्व बैंक में भेज देंगे,
कैंसिल करेंगे।
हाँ, मनुष्य गुरुओं की चित्र शुरू कर देंगे।
150 चल रहा है, 10-20 में।
ये सब मनुष्य गुरुओं की प्रधानता दिखाना और परमात्मा बाप को छुपाना, परमात्मा की मूर्तियों को छुपाना, देवताओं को छुपाना, ये काम करते कौन है? फाउंडेशन कौन डालता है? है, पहले कौन करता है? पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में ये शूटिंग होती है, ब्राह्मणों की दुनिया में। अब ये देखो, ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ दिल्ली में, नेहरू स्टेडियम में, इतने चारों तरफ सारी दिल्ली में पोस्टर लगाए गए, त्रिमूर्ति का चित्र नहीं है, शिव का चित्र कहीं है ही नहीं, गायब कर दिया। डाला किसका? दीदी दादी उनका उनका लोग उनका उनका चित्र डाल दिया। तो यहाँ फाउंडेशन पड़ता है और बाहर की दुनिया में वो काम शुरू हो जाता है। तो बोला ये बाप बैठ समझाते हैं रक्त की नदियां बहेंगी, यवनों और कौरवों की लड़ाई होगी। भारतवर्ष में किसकी लड़ाई खास होगी? यवन माने मुसलमान, क्या जो मुसलमान है और जो कौरव है वो लड़ेंगे। कौरव कौन है? कौ माने कौआ, रव माने शोरगुल, जो कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं, माइक बजा बजा करके माइकों पर प्रवचन देते ही रहेंगे, बड़े बड़े भाषण लंबे चौड़े करते हैं। और उनका धंधा क्या है? होटलों में जाकर के गंद खाना। कौआ क्या करता है? तो कौआ का तो धंधा है गंद खाना, काव काव करना और गंद खाना। तो ये कौरवों की और यवनों की लड़ाई होगी, ये कौरव और वो मुसलमान वो लड़ेंगे। ये तो हो गई बाहर की दुनिया की बात, हमारे यज्ञ के अंदर भी ऐसे ही है। क्या है असली बात? क्या है? हमारे यज्ञ के अंदर भी आधार मूर्त ब्राह्मणों की दुनिया में और आधार रूप जो जड़ें होती हैं, उन चैतन्य जड़ों के जो बीज होते हैं, उन बीज रूपों की दुनिया में, ये 3 दुनिया हो गई। अब कौन कौन सी? बाहर की दुनिया 500 करोड़ की, आधार मूर्तों की दुनिया ब्रह्मा कुमार कुमारियों की है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ब्राह्मणों की दुनिया हो गई। और ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो एडवांस पार्टी का ग्रुप है वो बीज रूप आत्माओं की दुनिया। तो बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी अच्छे अच्छे बुरे बुरे हैं क्या? अच्छे से अच्छे यहाँ हैं और बड़े पावरफुल से पावरफुल बुरे भी यहाँ हैं। बीज है ना, बीज में तो सारा वृक्ष समाया हुआ होता है ना। और वो जो जड़े हैं जो उधर, वो जड़े तो लंबी चौड़ी होती है, बीज तो छोटा सा होता है, तो वो छोटे बीज ज्यादा नहीं दिखाई पड़ेंगे और जड़े तो चारों तरफ फैली दिखाई पड़ेगी। तो वो जड़ रूप जो आधार मूर्त आत्माएं हैं उसमें भी लेफ्टिस्ट भी है और राइटिस्ट भी है,
विधर्मी भी।
हाँ, विधर्मी भी है और स्वधर्मी भी है। तो जो स्वधर्मी है वो बहुत थोड़े, विधर्मी सारे जितने धर्म हैं सनातन धर्म को छोड़ करके, हिंदू धर्म को छोड़ के सारे भी धर्म ही, इस्लामी बौद्ध ये सब क्या है, सारे भी धर्म ही है। तो बोला कौरवों की और यवनों की लड़ाई है क्या, जिनके हाथ में सत्ता है अभी भारत देश की, वो जितने बड़े बड़े नेता हैं वो सब क्या है, कौरव संप्रदाय है। और इसी तरीके से हमारे यज्ञ के अंदर जिनके हाथ में सत्ता है, बागडोर है, अथवा बागडोर होते हुए जो दूसरों के ऊपर बड़ी धौंस जमाते हैं, सत्ता सत्ता का रुआब दिखाते हैं, वो है सारे कौरव संप्रदाय। क्या वो कौरव संप्रदाय जो है वो, और जो मुसलमान है वो आपस में लड़ेंगे, इनका होगा युद्ध। ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर भी है, बाहर की दुनिया में जो मुसलमान और हिंदू हैं, और हिंदुओं में जो कौरव संप्रदाय है जिनके हाथ में शासन की सत्ता है, ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी कौरव संप्रदाय है जो गद्दियों पर बैठे हुए हैं। हाँ, मेरा घर बना करके बैठे हुए हैं, भगवान के घर को अपना घर बना करके बैठे हुए हैं, और बीज रूप आत्माओं में भी ऐसे हैं, किनके, कौरवों के भी बीज हैं, पांडवों के भी बीज यहाँ हैं, और यादव संप्रदाय के भी बीज यहाँ हैं।
बीज तो थोड़ा सा नीचे आया गया है।
हाँ जी हाँ जी। तो बोला यवनों और कौरवों की लड़ाई है, पांडव थोड़े ही लड़ते हैं, पांडवों को तो पंडा मिला हुआ है, वो तो श्रेष्ठ रास्ता बताने वाला है, खून खराबा थोड़े ही करवाएगा। बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ मामी कम याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। अभी लड़ाई लड़ने की बात नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता है देह अभिमान से, क्या करो आत्माभिमानी बन जाओ तो किसी से लड़ाई लड़ने की दरकार नहीं रहेगी। आत्माभिमानी जो होता है वो सारा काम वाइब्रेशन से ही कर लेता है, उसको बोल बोल करने की, वाचा की लड़ाई करने की भी दरकार नहीं, और कर्मेंद्रियों से भी लड़ाई लड़ने की दरकार नहीं। पांडव थोड़े लड़ते हैं, तो देह अभिमान छोड़ दो, मुझे एक को याद करो तो तुम्हारी अंत मते सुगति हो जाएगी। जो मेरे वाइब्रेशन है वो तुम्हारे वाइब्रेशन बन जावेंगे और तुम जीत जावेंगे, तत्योगी समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जावेंगे। पांच तत्व तो है ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये पांच तत्व तो है ना, रावण के सिर है ना, रावण के सिर पांच विकार हैं और रावण के सिर पांच तत्व तो हैं, पांच तत्व तो है ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये पांच तत्व तो जो है वो भी रावण के सिर है। हाँ, और पांच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भी रावण के सिर है, लेकिन इन दसों सिरों के ऊपर क्या दिखाया जाता है, हैं? इन दसों सिरों के ऊपर कुछ दिखाया जाता है क्या, गधे का सिर दिखाया जाता है, वो गधे का सिर भी उसके ऊपर रखा हुआ है, वो इन पांच तत्वों को और पांच रावण को चलाने वाला है क्या। तो बोला तो वो तो समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ब्रह्म कहो ब्रह्मा कहो वो ब्रह्मा की गोद में ही अपना शरीर छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ब्रह्म में कोई लीन होता ही नहीं, ब्रह्म कहो ब्रह्मा कहो वहां लीन होने की बात नहीं, उनकी बुद्धि में तो वो ही आवेगा क्या ब्रह्म, परंतु ब्रह्म लीन अथवा ज्योति में ज्योति समाता तो कोई नहीं है। बाप तो कहते हैं मन मना भाव, सिर पर बोझ बहुत है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे, हमको तो बैठे बैठे शिव बाबा की याद में जाना चाहिए, अगर बहुत समय से याद नहीं करेंगे तो पिछाड़ी में वो अवस्था नहीं रहेगी, कौन सी, बहुत सन्यासी लोग बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, भक्तों की भी महिमा कोई कम नहीं है, ब्रह्मा ओ हम ब्रह्मास्त्र में कहते हैं, ऐसे ऐसे बैठे बैठे चले जाते हैं, फिर भी पुनर्जन्म तो उनको लेना ही पड़ता है, मोक्ष की तो बात ही नहीं है। अब बाप कहते हैं हम सब आत्माओं को साथ ले जाऊंगा, क्या देह अभिमानियों को किसी को साथ है? देह अभिमानियों को साथ नहीं ले जाऊंगा, किसको ले जाऊंगा, आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। पहले तो इस साकार दुनिया में जो ब्रह्मलोक तैयार होगा, क्या इस साकार दुनिया में जो ब्रह्मलोक तैयार होगा परम धाम, उस परम धाम जैसे निराकारी संगठन में तुम बच्चों को ले जाऊंगा, इन बच्चों को ले जाऊंगा जो आत्मिक स्टेज में होंगे उनको ले जाऊंगा। तो उनको ले जाऊंगा, बाबा के साथ हम चलेंगे। रात दिन यही चिंतन में रहना चाहिए कि कैसे बाप का परिचय सबको दे। क्या इशारा दिया है? इशारा दिया कि तुम बच्चों को जो आत्मिक स्टेज में यहां स्थित हो जाएंगे, निसंकल्पी स्टेज पहले बना लेंगे, वो बच्चे इसी सृष्टि पर कोई स्थान होगा जहां परामधाम जैसा संगठित वायुमंडल होगा, वो बच्चे वहां जाकर रहेंगे, वो होगा निराकारी लोक। इसलिए मुरली बोला तुम बच्चे परमधाम को भी सृष्टि पर उतार लेंगे। इसलिए अव्यक्तवाणी में इशारा दे दिया, मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशालाएं छोड़नी पड़ेगी।
ताला नहीं लगाने देंगे,
ताला भी नहीं, इतनी इतना भी चांस नहीं देंगे कि ताला लगाओ, भागो भागो। और एक अव्यक्तवाणी में बोला है रावण 20 नाखूनों का जोर देकर क्या कर रहा है? तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रहा है, तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रहा है, तो अपना पुरुषार्थ करो मस्ती से। ओम शांति।